ये आकाशवाणी है। अब आप मुकेश कुमार बल से समाचार सुनिए। सरकार ने आगामी जनगणना में जाति गणना को शामिल करने का निर्णय लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की राजनीतिक कार्य समिति ने यह फैसला किया। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कल नई दिल्ली में बताया कि जनगणना केंद्र का विषय है। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि विपक्षी सरकारों ने सदैव जाति जनगणना का विरोध किया है।
कांग्रेस और एनडी गठबंधन के दलों ने जाति जनगणना के विषय को केवल अपने राजनीतिक लाभ के लिए उपयोग किया। हालांकि कई राज्यों ने सर्वे के माध्यम से जातियों की जनगणना की है। जहां कुछ राज्यों ने यह काम सुचारू रूप से संपन्न किया है, वहीं कुछ अन्य राज्यों ने राजनीतिक दृष्टि से और गैर पारदर्शी ढंग से सर्वे किया है। इन सभी स्थितियों को ध्यान में रखते हुए कि हमारा सामाजिक ताना बाना राजनीति के दबाव में न आए, जातियों की गणना एक सर्वे के स्थान पर मूल जनगणना में ही सम्मिलित होनी चाहिए।
श्री वैष्णव ने कहा कि इससे सामाजिक और आर्थिक ढांचा मजबूत होगा और देश निरंतर प्रगति करेगा। उन्होंने कहा कि मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने शिलांग से सिलचर तक नए राजमार्ग के निर्माण को भी स्वीकृति दी। इस पर 22,864 करोड़ रुपए की लागत आएगी। श्री वैष्णव ने कहा कि ये परियोजना पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास में महत्वपूर्ण साबित होगी। मंत्रिमंडल ने गन्ना पेराई मौसम 2025-26 के लिए 355 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से गन्ने का उचित और लाभकारी मूल्य तय करने की भी स्वीकृति प्रदान की। गृह मंत्री अमित शाह ने केंद्र के आगामी जनगणना में जाति गणना को शामिल करने के निर्णय को सामाजिक समानता और हर वर्ग के अधिकारों के प्रति दृढ़ प्रतिबद्धता का संदेश बताया है। भाजपा अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी, लोक जनशक्ति पार्टी के नेता और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान, तेलुगु देशम पार्टी प्रमुख और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव डी राजा और अन्य नेताओं ने इस निर्णय का समर्थन करते हुए इस पहल को ऐतिहासिक बताया। मुंबई में आज से आयोजित होने वाले भारत के पहले वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट समिट वेव्स के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मुंबई के जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में वेव्स 2025 सम्मेलन का शुभारंभ करेंगे। 4 दिन के सम्मेलन का मुख्य विषय क्रिएटर्स और देश को एकजुट करना है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री 32 क्रिएट इन इंडिया चैलेंज के माध्यम से चुने गए क्रिएटर्स से बातचीत भी करेंगे। जनजातीय कार्य मंत्रालय और भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड ने 19 राज्यों में एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों में 75 अंतरिक्ष प्रयोगशालाएं स्थापित करने का निर्णय लिया है। प्रत्येक प्रयोगशाला में LMV-3 लॉन्च व्हीकल और EO सैटेलाइट डेमो मॉडल, स्टार ट्रैकर टेलीस्कोप तथा कैनसेट वर्किंग मॉडल सहित उन्नत वैज्ञानिक उपकरण शामिल होंगे। इस पहल के साथ मंत्रालय आदिवासी युवाओं के लिए अंतरिक्ष विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित के क्षेत्र में नई राह खोलना चाहता है। लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा ने उधमपुर में उत्तरी सेना कमान के नए कमांडर इन चीफ का पदभार संभाल लिया है। श्री शर्मा ने लेफ्टिनेंट जनरल MV सुचेंद्र कुमार का स्थान लिया। लेफ्टिनेंट जनरल सुचेंद्र कुमार 30 वर्ष से अधिक की सेवा के बाद कल सेवानिवृत्त हुए। लेफ्टिनेंट जनरल शर्मा ऑपरेशन पवन, मेघदूत, रक्षक और पराक्रम जैसे प्रमुख अभियानों में शामिल रहे। पहलगाम आतंकी हमले के मद्देनजर भारत ने पाकिस्तानी एयरलाइनों के लिए अपना हवाई क्षेत्र बंद कर दिया है। यह फैसला 23 मई तक प्रभावी रहेगा। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने बताया है कि भारतीय हवाई क्षेत्र पाकिस्तान में पंजीकृत विमानों, पाकिस्तानी एयरलाइनों द्वारा संचालित स्वामित्व वाले विमानों सहित सैन्य विमानों के लिए इस अवधि के दौरान उपलब्ध नहीं है। पाकिस्तानी एयरलाइनों को भारतीय हवाई क्षेत्र का उपयोग करने से प्रतिबंधित करने के लिए नोटिस टू एयरमैन जारी किया गया है। इधर IPL क्रिकेट में पंजाब किंग्स ने मेजबान चेन्नई सुपर किंग्स को 4 विकेट से हरा दिया है। पहले बल्लेबाजी करते हुए चेन्नई सुपर किंग्स 190 रन बनाए। पंजाब किंग्स ने 19वें ओवर और 4 गेंद में ये लक्ष्य हासिल कर लिया। पंजाब किंग्स के कप्तान श्रेयस अय्यर को प्लेयर ऑफ द मैच घोषित किया गया। आज जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में मेजबान राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।